जब इनकी वफात हुई, अल्लाह के नबी दुखी थे। मक्का के वालों का जुल्म और सितम आम हो चुका था, गम तकलीफ थी। अल्लाह ताला ने खदीजा के बाद जिस औरत को आपकी ज़ौजियत में दिया, वो हज़रत सौदा बिनते ज़मा रदी अल्लाहु अन्हा थी। सौदा सीन से है, वो दालहा बिनते ज़मा ज़ा। ये अपने चचा साद भाई सुकरान बिन अमर के निकाह में थी। दोनों ने इस्लाम कबूल किया और हबशा हिजरत की, फिर मक्का वापस आए। हज़रत सकरान रदी अल्लाहु अन्हो का इंतकाल हो गया। इनके बाद शवाल सन 10 नबवी में, यानी हज़रत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात के कोई 1 महीने बाद, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे शादी कर ली। इनकी वफ़ात मदीना में शवाल 54 हिजरी में हुई। अल्लाह अकबर, 54 हिजरा, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के 44 ईयर्स के बाद ये फौत हुई। और आप में से कुछ लोगों को शायद पहले से मालूम हो कि ये बड़ी उम्र की औरत थी, स्याह रंग की थी, और अरबी में सौदा कहते ही काली औरत को हैं, मोटे जिस्म की थी। ज़ाहरी तौर पे जो औरतों में कोई अट्रैक्शंस होती है, उस तरह की कोई अट्रैक्शन भी इनमें नहीं थी। और ये वही बीवी हैं कि जिनको एहसास हुआ किसी मौके पे कि कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह के नबी मुझे छोड़ दें तो मैं आपकी ज़ौजियत से निकल जाऊं, तो इन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी, मैं अपनी बारी हज़रत आयशा को देती हूँ, क्योंकि अब मैं उम्र के उस दौर में हूँ कि मुझे इस तरह की चीज़ों की तलब नहीं है। तो आप चाहें तो आप हज़रत आयशा रदी अल्लाहु अन्हा को मेरी बारी दे दें, जिस तोहफे को अल्लाह के नबी ने फिर कबूल किया था। तो उसके बाद आप देखेंगे ये अल्लाह के नबी के बाद भी इतना ज़िंदा रही, कितनी बड़ी बात है। अब यहाँ हम ये बात भी सोच सकते हैं कि अल्लाह के नबी को पहली बीवी जो मिली बेवा, उम्र में 15 साल बड़ी, बच्चों वाली, दूसरी बीवी जिस्मानी खूबसूरती कम, उम्र की बड़ी, क्या मिजाज समझ में आता अल्लाह के नबी का? कैसे थे, आशिकाना मिजाज था? नहीं। और ये वो दौर था जब अल्लाह के नबी अभी इतने मसरूफ़ भी नहीं थे, अभी तो खुद अखज़ करने के दिन थे ना। आप सोचते ना कि हम कोर्स कर रहे हैं तो हम बड़े बिजी हैं, बहुत मसरूफ़ होता है बंदा कुरान का कोर्स ज्वाइन करके। ये उस दिन आपको पता चलेगा, और अल्लाह करे कि आपको सबको पता चले, जब आप अगले मरहले में शुरू होंगे, जब अगले राउंड में, जब सीखना भी है और साथ सीखना भी है सिखाने का। और जब उसके बाद दिन ब दिन आप देखेंगे काम जिस्मानी कम हो जाते हैं लेकिन जहनी और मामलाती काम बहुत बढ़ जाते हैं। तो अल्लाह के नबी का सबसे मसरूफ़ दौर मदीना का दौर था, जब आप एक हाकिम भी थे। और ये शुरू के दिन जब जवान भी हैं, अकेले भी हैं, तो बीवियां देख लीजिए कैसी मिल रही हैं। और सबसे बड़ी बात है कोई औलाद भी नहीं हुई इनसे, लेकिन अल्लाह के नबी ने कभी किसी से कोई बात कही या सुनी। लेकिन बहरहाल इनसे शादी के बाद फिर अल्लाह के नबी सल्लम की तीसरी शादी हज़रत आयशा सिद्दीका बिनते सिद्दीक रदी अल्लाहु अन्हुमा से हुई। हज़रत आयशा, आशा किसको कहते हैं, ज़िंदगी बसर करने को। मैं आयशा का नाम लेती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि ये अल्लाह के नबी की ज़िंदगी थी। ये जो हम कहते हैं ना ऐश कर लो, वो भी यही लफ्ज़ है, आशा या ईश ईशतन। कुरान पाक में आता है फ़ी ईशत रौदिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे हज़रत सौदा के 1 साल बाद शवाल 11 नबवी में शादी की। इस वक्त इनकी उम्र मुबारक 6 साल थी। फिर हिजरत के 7 महीने बाद शवाल यकम हिजरी में आपको रुख्सत किया गया। इस वक्त आपकी उम्र 9 साल थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके अलावा किसी कुमारी औरत से शादी नहीं की। ये उम्मत की सबसे ज़्यादा फकीह औरत है। फकीह कहते हैं बहुत समझदार, फिक्र रखती, समझ बूझ वाली, यानी आप कह लीजिए कि जिनको बहुत समझ बूझ थी दीन की, ये उनमें से थी। और छोटी उम्र में थी, क्यों थी ये अभी हम इस पे बात करते हैं, लेकिन कुछ फैक्ट्स इनके हम समझ लें। और एक स्ट्रेच में सारा करना भी इसलिए चाहती हूँ कि हमारे जहन में तकाबुल मौजूद रहे। औरतों पर इनकी फजीलत ऐसी है जैसे तमाम खानों पर सरीद खाने की फजीलत। सरीद क्या होता है? जिसको आप आज के दौर में हरीसा कहते हैं। गोश्त में रोटियां डाल के अरब लोग पकाते थे, शोरबे नुमा की एक चीज़ होती थी और अल्लाह के नबी को बहुत पसंद थी। और एक मौके पे आपने हज़रत आयशा के बारे में ये कमेंट दिया था कि आयशा को दूसरी औरतों पे ऐसी फजीलत हासिल है जैसे सरीद के खाने को दूसरे खानों पे। 17 रमज़ान 17 57 यानी 57 हिजरी को इनकी वफात हुई और इनको बकी में दफन किया गया। आप देखिए कि हज़रत सौदा का इंतकाल होता है 54 में और इनका होता है 57 में। उम्र में उनसे इतनी छोटी थी लेकिन वफात 3 साल के फ़र्क से हुई। अब आप देखिए हज़रत आयशा सबसे ज़्यादा जिसको आप कहना चाहिए कि कंट्रावर्सी चलती है तो अल्लाह के नबी के हज़रत आयशा के साथ निकाह पे चलती है। हम इस वक्त उस तरह पढ़ नहीं रहे इसलिए ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन समझ लीजिए पहली दो शादियों की बात कभी किसी ने नहीं की। कभी आपने किसी प्रोपेगंडे में ये सुना कि अल्लाह के नबी ने 25 साल की उम्र में 40 साल की औरत से शादी कर ली, बच्चों वाली से कर ली, बेवाओं से कर ली, शादीशुदा औरतों से कर ली, कभी नहीं सुना। जब सुनेंगे आयशा की शादी सुनेंगे तो यहाँ 6 साल की उम्र हो सकता है आपको भी कुछ खटका पैदा कर ले। तो आइए समझ लीजिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादियाँ दीन का हिस्सा थी। सल्लु कमा रअईतुमूनी उसल्ली के तौर पे जो बात कही गई कि नमाज वैसे पढ़ो जैसे मुझे पढ़ता देखते हो, तो जिस तरह नबी के ज़रिए से नमाज रोज़ा हज सिखाया गया इसी तरह से मुआशरत भी सिखाई गई, मईशत भी सिखाई गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रोल मॉडल थे और सिर्फ एक आइडियल हालात के लिए नहीं थे कि जिनकी 16 साल की खूबसूरत सी लड़की हो और 18 से 20 साल का खूबसूरत लड़का हो और उनकी शादी का रिश्ता हो जाए। ये दीन अरब के लिए भी है, अजम के लिए भी है, कालों का भी है, गोरों का भी है, ये शादीशुदा लोगों का भी है, ये कमारों का भी है, ये बेवाओं का भी दीन है और रांड का भी है। नबी सल्लम के ज़रिए से अल्लाह ताला हर मुमकिना सूरत जो दो लोगों के बीच में निकाह की हो सकती है उसको वैलिड करना चाहते थे। बड़ी उम्र की औरत से शादी हो सकती है, शादीशुदा से शादी हो सकती है, बच्चों वाली से शादी हो सकती है, छोटी उम्र वाली से भी हो सकती है। आप कहेंगे कौन करता है? आप देखिए फिर बात कहूंगी कि इसको आइडियल हालात पे ना लें कि बड़े प्रोटोकॉल के साथ शादियां होती हैं और आप कहते हैं अच्छा लड़का इतनी साल का और लड़की ऐसी। नहीं, आपको पता है कि जब पाकिस्तान और इंडिया की मूवमेंट चल रही थी, जब इस तरह के हालात बनते हैं, जंगी हालात, या आज भी इवन जिन जगहों पे मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है वहाँ ये हालात देखने में आएंगे। बस दफ़ा होता है कि पूरे का पूरा घराना मारा जाता है, बाप भी गया, बेटा भी गया, बाप भी गया, भाई भी गया, अब 7 8 10 साल की बच्चियां अकेली रह गई। अब इस्लाम क्या कहता है? देखिए एक बात समझिए, जब तक हम इस्लाम का पूरा नक्शा किसी के सामने नहीं रखेंगे ना लोगों को समझ नहीं आएगा। अब हम तो बहन दो बेटी की दोस्त को भी कहते हैं बेटी इधर आओ, सर पे हाथ फेर देंगे, गले से लगा लेते हैं, बेटे के दोस्तों को भी कहते हैं ये मेरा बेटा है, चलो बेटा मुझे उधर छोड़ो, उसके साथ स्कूटर पे बैठ के चले जाते हैं। इस्लाम इसको पसंद नहीं करता। इस्लाम बहुत क्लियर एंड क्लीन है। किसी के साथ आपका रिश्ता है ना, या तो 3 रिश्ते होंगे, नसब का, हसब का यानी नसब और हसब इकट्ठा कर ले, यानी सगा रिश्ता, आपका बेटा हो सकता है, आपका भतीजा हो सकता है, आपका भांजा हो सकता है, ठीक है, आपका भाई हो सकता है, आपका बाप हो सकता है, ये हो गए रिश्ते खून के। दूसरी सूरत है सहर का रिश्ता, ससुराली ताल्लुक से जो रिश्ते बनते हैं, मसलन आपका ससुर, दैट्स इट। ससुराल से सिर्फ दो ही चीज़ें मिलती हैं आपको, एक ससुर मिलता है और एक शौहर मिलता है, ये आपके महरम हो गए। यानी शौहर का मामला तो डिफरेंट है लेकिन ससुर के साथ इंसान अकेले रह सकता, जा सकता, आ जा सकता। उसके बाद सौतेला बेटा, शौहर का बेटा, आप किसे नहीं दूसरी बीवी से हैं लेकिन आप उस मर्द की बीवी बन के रह रही हैं, तो सौतेला बेटा भी आपका क्या बिल्कुल हमेशा के लिए महरम हो गया। इसके अलावा देवर, जेठ, देवरों के बच्चे, जेठों के नंदोई, ये सब इस्लाम इसको दूसरी कैटेगरी पे लेता है। तीसरी सूरत होती है रजात की, दूध पिला लिया। आप किसी को दूध पिला दें वो आपका रजाई बेटा है, बिल्कुल मिसल सगे बेटे के, बिल्कुल सारी ज़िंदगी के लिए महरम है, आप हज पे जाएं, उसके साथ आइसक्रीम खाने जाएं, दवाई लेने जाएं, नो प्रॉब्लम। इसी तरह दूसरी सूरतें। फिर इसी तरह आप देखिए कि जब इंसान दूध खुद नहीं पिलाता उसकी बहन ने पिलाया तो अब रजाई खाला बन गई, बिल्कुल वैसी ही खाला जैसी आप सगे भांजे की खाला है, फुफ्फी बन गई। इसके अलावा इस्लाम किसी को इजाज़त नहीं देता कि कोई गैर महरम किसी महरम के साथ इस तरह के लाओ। अब जब इस तरह के हालात बन जाते हैं, बाज़ जंगों में 15 20 बच्चियां किसी की बैठी हुई हैं और सब बाकी ख़त्म हो गए, या हालात कुछ इस तरह के एडवर्स हैं। और याद रखिए कि ये रुख्सतें हैं, पसंदीदा अमल नहीं है। हदीस में आता है कि कफ ढूंढो, काफ फा वाओ को कहते हैं, काफ फा, कुछ लोग उसको कफू पढ़ते हैं हालांकि वाओ को प्रोनाउंस किया जाता है। कफ क्या कहते हैं कि बराबरी देखो, इस्लाम पसंद करता है लड़का कैसे लड़की कैसी है, उनका मिलान, उनके रुझान, इंक्लाइनेशन देखो, उम्र देखो, खानदान देखो, ताकि मैचिंग अच्छी हो जाए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर हालात ऐसे बिगड़ जाएं तो फिर उस बच्चियों को सरवाइव करने के लिए किसी के साथ अगर इस तरह निकाह में दे दिया जाए तो कोई बुरी बात नहीं। आप कहेंगे नहीं वो तो बाप के बराबर, बाप के बराबर तो है, बाप तो नहीं है ना। तो ये सिर्फ एक इस्तेनाई इस्तेनाई सूरत है। और आप देखेंगे इस्लामी हिस्ट्री पढ़ लीजिए, आपको इक्का दुक्का मिसालों के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन इस हुक्म की इबाहत मकसूद थी, मुबाह करना था अल्लाह ने इस काम को। दूसरी हिकमत, हजरत आयशा के साथ शादी में, और वो क्या कि उस दौर में एक मिथ थी, मिथ समझते हैं, ख्याल कि मुंह बोले भाई की बेटी जो होती है ना वो अपनी बेटी के बराबर होती है। जैसे आज भी लोग कहते हैं ये तो मेरे अब्बू के दोस्त हैं तो मैं इनको बाप समझती हूँ। ठीक है, समझना चाहिए, बुरी बात नहीं है, लेकिन ये कहते थे कि इसके साथ निकाह नहीं हो सकता। अबू बकर सिद्दीक और नबी सल्लम आपस में भाई थे, मुंह बोले भाई थे कह लीजिए अपनी जुबान में। अब आपके साथ हजरत आयशा का निकाह करवा कर अल्लाह ने अरबों की इस रस्म को तोड़ा कि मुंह बोला भाई चचा नहीं होता बल्कि वो गैर महरम होता है। तीसरी हिकमत जो बहुत ज्यादा खुल के सामने आती है बाद में, कि अल्लाह ताला अपने नबी के जरिए एक ऐसा किरदार तैयार करवाना चाहता था जिसने नबी के जेरे साया तरबियत पाई हो। हम सब इसको बहुत अच्छी तरह जानती हैं कि अमूमन जब लड़कियों की शादी होती है 15, 20, 25 साल में, तो उनकी एक पूरी पर्सनैलिटी डिवेलप हो चुकी होती है, बिल्कुल उनकी आदतें तक इतनी पुख्ता हो चुकी होती है। बाज़ दफ़ा वो कठोर की कठोर अपनी आदतों से हिलती नहीं और थोड़े दिनों में घर तोड़ के आ जाती हैं, कहती हैं मेरा इसके साथ गुजारा नहीं होता, क्योंकि वो एक मजबूत दीवार की तरह जम चुकी होती हैं। कुछ अकलमंद होती हैं, वो अपने आप को ढालती हैं, लेकिन कुछ तो फ़र्क पड़ता है। चूँकि नबी सल्लम की कोई औलाद इस तरह से नहीं थी कि जो बाद में आपके काम करे, हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को भी अल्लाह ने बहुत वहम दिया, लेकिन आपको पता है कि नहीं, लेकिन अल्लाह के नबी की वफ़ात के सिर्फ 6 महीने के बाद हजरत फातिमा का इंतकाल हो गया था, आखिरी बेटी थी जो फौत हुई, 3 बेटियाँ आपकी ज़िंदगी में चली गई थी। तो लिहाजा हजरत आयशा असल में नबी सल्लम की स्टूडेंट भी थी। अब 6-9 साल की उम्र में जब एक बंदा आपको मिलता है, सारा वक़्त देखना, खाना पीना, आपकी डीलिंग्स, और बाकायदा आप अपनी बीवियों की तालीम का इंतज़ाम करते थे, तो नतीजा क्या होता कि हज़रत आयशा ने आपसे बहुत कुछ सीखा। बड़े बड़े सहाबाए कराम जो थे वो हज़रत आयशा के स्टूडेंट्स थे। फिर इसमें एक ख़ास तौर पे जो पॉइंट है वो क्या है कि हज़रत आयशा के ज़रिए नबी सल्लम की निजी ज़िंदगी सामने आई। आज आप जितने भी अबवाब अहादीस के पढ़ेंगे, पीरियड्स के मसाइल, शोहर बीवी की मसाइल, जुनाबत के मसाइल, ये हज़रत आयशा से मोस्टली मिलते हैं और बाकी बीवियों से भी मिलते हैं। तो गोया कि हज़रत आयशा एक इल्म का ख़जाना बनी, अल्लाह ने उनको फिर लंबी उम्र भी दी, तकरीबन नसफ सदी तक आपके बाद इस्लाम की खिदमत करती रही, बल्कि कहते हैं कि आयशा को आधा इल्म दिया गया पूरी शरीयत का। बड़े बड़े सहाबा हज़रत आयशा के फतवों के आगे खामोश हो जाते थे कि अब हम इसके आगे और कुछ नहीं कह सकते, और फहम बहुत था। छोटी उम्र में जिसको इतना प्यारा साथी मिल गया उसका फहम तो खुद ही बढ़ेगा। हमारी तो मत ही मारी जाती है शादियों के बाद, जो थोड़ा बहुत अंदर खैर का कोई मादा होता है वो भी रिश्तों और निभा और मसलहतों के नाम पे हम वो दीन रोज़ा नमाज छोड़ के कहते हैं पता नहीं शादी हुई थी तो कुछ और थे, अब तो पता नहीं क्या बन गया। तो याद रखिए कि इंसान को अच्छा रंग लेना चाहिए, बुरा छोड़ना चाहिए। तो गोया के हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आपकी तीसरी बीवी थी।